सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल, सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मेडिटेशन की बहुत सुंदर चर्चा हो रही है और कल की चर्चा में तो हमने जाना कि वो परम सत्ता इस सृष्टि पर आकर अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। आत्मा के बारे में हमने जान लिया है, परमात्मा पिता के बारे में जान लिया है। चलिए जब भी आए आप यहाँ आके मिलन तो मनाएंगे, लेकिन तब तक जब तक यहाँ नहीं आ रहे हैं अपने स्थानों पर रह के कैसे राजयोग के माध्यम से मेडिटेशन के द्वारा उनसे मिलन मना सकते हैं और साथ ही अपने अंदर सुख शांति शक्ति को भर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं। इसी विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
मन आनंदित हुआ सभी का, बहुत प्रसन्न हुआ, सभी बहुत गदगद हुए होंगे कि परमात्मा जिनका इंतजार हम कर रहे थे सृष्टि पे आ गए हैं और वो दिन अब बहुत जल्दी आएगा कि जबकि ये नर्क स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। लेकिन भ्राता जी जब तक वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं माउंट आबू, उस परम परमात्मा से वो जो मिलन है वो अभी यदि साकार में नहीं मना पा रहे हैं तो राजयोग एक सुंदर माध्यम है जिसके द्वारा वहां बैठे बैठे ही वो उस परम सत्ता को याद कर सकते हैं। तो हमने परिचय तो प्राप्त किया भ्राता जी, अब जो एक बात आप प्रारंभ में कह रहे थे कि वो हमारा हो गया है या हमसे एक संबंध उससे हमें जोड़ना है, तो वो संबंध हम परमात्मा से कैसे जोड़ें?
मुख्य बात राजयोग में ये है ही
जी
कि भगवान हमारा है। भक्ति में तो केवल गाते थे तो मात पिता हो, बंधु सखा हो, परम सदगुरु हो, लेकिन अब ये नाता उससे प्रैक्टिकल में जोड़ना है, इसकी अनुभूति हमें करनी है
जी।
और राजयोग का पहला कदम यही है कि हम उससे अपना नाता जोड़ लें। देखिए मुझे याद आती है रामायण की वो घटना जब राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और पहली मुलाकात में श्री राम सुग्रीव से ऐसे प्रभावित हुए कि उनको कहा हे राजन आज से हम तुम्हारे हुए, तुमने तो हमें बिनमोल खरीद लिया। तो देखिए ये बात पुरुषोत्तम संगम युग की है। भगवान भी आकर हमें कहता है बच्चे मैं तो तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा हूं, फील करो, तुमने ये नाता तोड़ दिया है, तुम हाथ जोड़ के मेरे से मांग रहे हो, तुम याचक बन गए हो, हे प्रभु शांति दो, सुख दो, दुख हरो, बुद्धि दो, लेकिन मैं तो तुम्हारा हूं और मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है, इसलिए अपने अधिकार को जानो, वो प्राप्त करो, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं मेरे से, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही है। तो हम उससे नाता जोड़े, वो हमारा परम पिता है, हम भक्ति में कहते आए, अब हम उसे अपना पिता मान लें, अब वो तीन रूप से विशेष तरह से हमारे सामने उपस्थित हुआ है, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु। इन तीनों स्वरूपों से हम अपना नाता उससे जोड़ें। आज लोग गुरु बना रहे हैं मनुष्यों को, गृहस्थियों को भी गुरु बना रहे हैं, जो पवित्र नहीं है उनको भी गुरु बना रहे हैं। सबको जान लेना चाहिए ऐसे गुरुओं से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो परम सदगुरु है, गुरुओं का गुरु जो सर्वशक्तिवान है, वही मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति का दाता है, उसे ही अपना गुरु बनाएं, उसे अपना परम सदगुरु मान लें, तो उससे शक्तियां मिलेंगी, वरदान मिलेंगे, सुख शांति मिलेगी। आजकल क्या है, गुरु लोग बनाते हैं, कोई छोटी मोटी इच्छा पूरी कर दी, बिजनेस खराब था ठीक हो गया, बच्चे की शादी नहीं हो रही थी हो गई, कोई बीमारी आ गई थी ठीक करा दी। लेकिन ये अल्पकालीन प्राप्तियां हैं, कल फिर वही हो जाएगा, फिर गुरु की शरण जाएंगे।
हमारे यहाँ एक कहावत है या एक बात कही जाती रही है भ्राता जी कि गुरुओं के बिना या गुरु के बिना गति नहीं होती है, तो इसीलिए शायद ये एक हमारी परंपरा सी बन गई है कि बच्चा छोटा ही होता है उसको गुरु करा दिया जाता है, या थोड़ा होश संभालता है गुरु करा दिया जाता है। तो ये जो गुरु की बात है, तो जिस गुरु के साथ हम एक नाता जोड़ते हैं, तो परम सदगुरु और इस गुरु में फिर वो जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझ में या क्लियर नहीं आता, क्योंकि परम सदगुरु तो दिखाई देते नहीं है, तो फिर कैसे हमें साकार में वो जो एक हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए या एक प्रकार से हमें श्रीमत मिलनी चाहिए वो तो हमें प्राप्त नहीं हो पाती है।
ये सत्य कहावत है कि गुरु बिना गति नहीं
जी,
लेकिन किस गुरु के बिना, जिस गुरु की अपनी ही गति न हुई हो, जो विकारों की दुर्गति में स्वयं फंसे हुए हो, वो भला किसी को सदगति कहां देंगे। वो परम सदगुरु जो संपूर्ण रूप से पावन है, जो ज्ञान का दाता है, वही सबकी सदगति कर सकते हैं, क्योंकि गुरु देगा ज्ञान और ज्ञान से होगी सदगति। बिना ज्ञान के कोई गुरु किसी को सदगति नहीं दे सकता। मान लो गुरु ने मंत्र दे दिया, मंत्र से तो थोड़ी बहुत शांति मिल जाएगी, थोड़ी बहुत शक्तियां सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन सत्य ज्ञान तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, भगवान कौन है। अब भगवान के बारे में तो चर्चा लोग करते नहीं गुरु भी, क्योंकि उन्हें डर है फिर मेरे से तो इनका नाता रहेगा नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, अनेक गुरु ये कह देते हैं। और वास्तव में ये बहुत बड़ा दोष हो रहा है कि वो भगवान से दूर कर रहे हैं मनुष्यों को, तो उनकी तो पहले ही सदगति हुई नहीं। इसलिए परम सदगुरु जो है, जो परम पिता है, जो सबसे ऊपर है, वही आकर सत्य ज्ञान देते हैं, मनुष्य के मन के अंधकार को दूर करते हैं, उनकी सोई हुई चेतना को जगाते हैं, उन्हें पवित्र बनाते हैं, याद दिलाते हैं उनकी शक्तियों की, उनकी पवित्रता की। और पहले मनुष्य आत्माएं मुक्त होती हैं पांचों विकारों से, वो मुक्त होती हैं पाप कर्मों से, वो मुक्त होती हैं लोभ मोह अहंकार से। तो स्पष्ट होता है कि मुक्त होते जा रहे हैं, सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल ये बात जान लेनी चाहिए सबको। जो मनुष्य यहाँ विकारों से मुक्त नहीं हुआ, जो मनुष्य यहाँ पाप कर्मों से नहीं मुक्त हुआ, जो इच्छाओं से तृष्णाओं से धन के लोभ लालच से मुक्त नहीं हुआ, उसको सदगति मिल नहीं सकेगी।
प्रताप जी, एक विशेष बात जो हमेशा से रही है कि चूंकि वो परम सदगुरु परमात्मा वो चूंकि दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए कोई साकार माध्यम तो चाहिए होता था गृहस्थियों को कि जो हमसे थोड़ा ऊपर है, जिसने पवित्रता का पालन किया है, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, तो ये परंपरा रहे कि उन्हें हम गुरु के रूप में स्वीकार करें। तो ये फिर एक परंपरा जो चलती आ रही है, शायद उसी को सभी फॉलो कर रहे हैं।
नहीं, ये परंपरा बहुत अच्छी थी
जी।
उस परम सदगुरु तक ले जाने के लिए किसी मनुष्य गुरु की परम आवश्यकता थी, पर हुआ क्या चलते चलते कि गुरु वहां तक नहीं ले जाके अपने तक रखने लगे, मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूँ। आजकल आप सुनते ही हैं गुरु कहने लगे मैं ही तुम्हारे लिए भगवान हूँ, मैं ही तुम्हें सब कुछ दूंगा और दिलाऊंगा। तो वो बात अच्छी थी कि वो ज्ञान देते परमात्मा का, वो जोड़ते सबको परम पिता से, वो उनके मन को शुद्ध करते, उन्हें कुछ श्रेष्ठ चीजों का आचरण कराते, लेकिन वो सब नहीं हुआ, इसलिए परम सदगुरु की जरूरत पड़ी और उसे खुद आना पड़ा, क्योंकि वो निराकार है और नो डाउट निराकार तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो उसे साकार माध्यम में आके बताना पड़ा मैं तुम्हारा सदगुरु हूँ, परम सदगुरु हूँ, मेरे से नाता जोड़ो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी।
बिल्कुल, मतलब अब तक हम गुरुओं के पास रहे, उनसे हमने ज्ञान लिया, वो तब तक आवश्यक था जब तक कि परम सदगुरु का आगमन नहीं हुआ था। अब चूंकि वो स्वयं आ गए हैं तो अब हम अपना डायरेक्ट नाता उस परम सदगुरु।
बिल्कुल, यही हुआ। गुरुओं ने भी लाइट दी, रात्रि में दीपक जला दिए जाते हैं, बड़ी हेलोजिन भी जला दी जाती है, कोई अच्छे गुरु भी रहे हैं, आज भी कोई बहुत अच्छे गुरु हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो हिमालय की कंदराओं में अभी भी अच्छी साधनाएं कर रहे हैं, जो शिष्य बनाने के, धंधे करने के और धन कमाने के चक्रों से बिल्कुल परे हैं।
और कई बार हमने ईश्वरी महावाक्य भी सुना है व्रता जी कि शायद सन्यासियों के कारण, गुरुओं के कारण, तपस्वियों के कारण ही सृष्टि थमी हुई रही
है। ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ गुरु, वास्तव में उन्हें गुरु न कहें, श्रेष्ठ तपस्वी, अभी भी बहुत सारे हैं जिनके कारण धर्म को अभी तक भी बल मिल रहा है, लेकिन लोग भागने लगते हैं आजकल उनके पीछे जो उनकी तत्कालीन मनोकामनाओं को पूरा करें,
चमत्कार
दिखा दें। जबकि महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में ये बात स्पष्ट की है, योग चमत्कार के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, जन कल्याण के लिए। लेकिन जो भी चमत्कार से मान सम्मान बहुत मिलता है, पैसा भी बहुत आता है, इसलिए लोग यहीं तक अटक कर रह जाते हैं। लेकिन अब परम सद्गुरु स्वयं आ गए हैं और उन्होंने सत्य ज्ञान दिया, उन्होंने ये राजयोग सिखाया कि इसके माध्यम से तुम मेरे से मिलन करो और मुझसे शक्तियां लो। बल्कि भगवान ने तो ये आज्ञा दे दी, राजयोग की ये डेफिनेशन दे दी, देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल कर, चाहे उसमें गुरु भी आ गए, संबंधी भी आ गए, मुझसे बुद्धि का नाता जोड़ो, ये है राजयोग। तो इसमें किसी भी देहधारी का बीच में कोई स्थान नहीं होता, इवन उनका भी नहीं जो प्रजापिता ब्रह्मा थे, जिनके माध्यम से ये बात भगवान ने कही, उनको भी बीच में नहीं रखा। तुम आत्माएं हो, इस देहभान से मुक्त हो जाओ और मुझ परम सत्ता से अपने मन बुद्धि को जोड़ो, तो मेरी शक्तियां, मेरी शांति, मेरी प्योरिटी, मेरा सुख, प्रेम तुम सबको प्राप्त हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे याद आई। देखिए, राजयोग परमात्म मिलन है, परमात्म मिलन के लिए नहीं, हमारे सभी दर्शक इस बात को अंडरलाइन करें, भगवान तक जाने के लिए राजयोग नहीं, राजयोग स्वयं प्रभु मिलन है। इसमें हमें परमात्मा की समीपता का आभास होता है, उसके मिलन की दिव्य अनुभूतियां होती हैं। तो एक बहुत अच्छी बात, जब बाबा यहाँ पर थे साकार में, शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश करके कही थी, हे बच्चे, तुम दो युग तक देवताओं के साथ रहे। हम सतयुग और त्रेता युग में, देव युग में थे, हम देवता थे, देवताओं के साथ थे। पिछले दो युग तुम मनुष्यों के साथ रहे, अब मेरे साथ रहकर देखो। तो ये राजयोग हमें विद्या सिखाता है कि हम परमात्मा के साथ कैसे रहें। लोग कहते रहे वो यही है, सबके साथ है, पर वो तो कुछ हुआ नहीं। हमें उनके साथ रहना है, इससे परम सुख की अनुभूति होती है, अतिंद्रिय सुख भासता है, इससे मनोविकार नष्ट होने लगते हैं, आत्मशुद्धि होने लगती है, मनुष्य का चित्त बहुत प्रफुल्लित और पावन होने लगता है, ये राजयोग है।
दो बहुत गहन बातें आपने कही हैं भ्राता जी, इस पे मैं आगे भी स्पष्टीकरण आपसे लेता रहूंगा, लेकिन हमारे दर्शक भी इस पे बहुत गहराई से विचार करेंगे। गीता में जो ये महावाक्य आया है कि देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल कर सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भाव शायद यही है कि जो भी है देहधारी उनसे मुक्त होके उस निराकार को हम याद करें। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चिंतन के लिए कि दो युग तो देवताओं के साथ रहे, दो युग मनुष्यों के साथ रहे, अब समय है परमात्मा के साथ रहने का। लेकिन एक बात भ्राता जी जो मेरे मन में बात उठ के आ रही है, गुरुओं से संबंधित ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, तो गुरु की ही बलिहारी गाई गई है, तो ऐसे में गुरु की महत्ता मानते हुए लोग गुरुओं को इतना सम्मान देते हैं और उनसे इमोशनली जुड़े रहते हैं, तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा डिटैच करना कैसे संभव है?
बिल्कुल, आपने आधी लाइन पढ़ी, आधी में पढ़ देते हैं।
जी,
गुरु गोविंद दौ खड़े काको लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो गुरु उस गुरु की बलिहारी है जिसने गोविंद से मिला दिया, लेकिन जिसने गोविंद से दूर कर दिया, जो अपने से मिला रहे हैं, वो गुरु गुरु नहीं है, वो गुरु गाइड नहीं है, वो गुरु सदगति दाता नहीं है। भले ही हमारी ये कड़वी बात लोगों को पसंद ना आए, पर सत्य तो यही है, उस गुरु के पांव पहले पड़ने चाहिए जो गोविंद से मिला दे, जो भगवान से मिला दे। पर कहां मिला रहे लोग? कहने वाले शायद कबीरदास की ये बात है, बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने, और इसका बड़ा महत्व है, इसलिए गुरुओं की ओर लोग चलने लगे और गुरु भी ये कहने लगे मेरे बिना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। सत्य बात है, लेकिन अगर वो परमात्मा का ज्ञान दें, अगर वो परमात्मा की ओर ले चलें, अगर वो परमात्मा के प्रति समर्पण भाव पैदा करें, वो क्या कर रहे, मेरे लिए सब कुछ समर्पित कर दो, मेरे आगे समर्पित हो जाओ। तो भगवान ने खुद कह दिया, देखिए हम तो जब ज्ञान के मार्ग पर आए तो हमने बात सुनी, भगवान खुद बोल रहा है कि भाई गुरु हैं तो अच्छे, उन्होंने भारत को पवित्र बनाने में पवित्रता का योगदान भी दिया, लेकिन आज के गुरु अपने से लोगों को जोड़ रहे हैं, मेरे से नहीं। बस ये बात अगर ठीक कर ली जाए तो गुरुओं में भी तेज आ जाएगा और गुरु हमारे देश या संसार के कल्याण के लिए निमित्त बन जाएंगे। नो डाउट गुरु का महत्व है, जैसे टीचर हैं, अगर टीचर पढ़ाए नहीं तो वो गाइड है ना विद्यार्थी,
तो एक इंस्ट्रक्टर तो चाहिए होता है कहीं तक पहुंचने,
लेकिन वो इंस्ट्रक्शन ठीक दे। अगर मान लो टीचर है फिजिक्स का और लेबोरेटरी में उसे बहुत कुछ सिखाना है लेकिन वो सिखाए नहीं, तो बच्चे उसको अच्छा कैसे मानेंगे, उसके प्रति श्रद्धा कैसे रखेंगे। अभी केमिस्ट्री का लेक्चर आ रहा है, बच्चों को लेबोरेटरी में ले जाता है, वहाँ इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर सारी चीजें सिखाता है, ये मिलाओ, ये बनेगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, तो लोग सीखते हैं, पर कोई सिखा ही ना रहा हो।
बिल्कुल,
तो बात यही है कि सच्चा गुरु वो जो मनुष्य को परमात्मा से
मिला दे। माता जी एक चीज और, कई लोगों में ये एक रहती है बात, डर के रूप में रहती है, जो कहा गया है कि गुरु का निंदक ठहर ना पाए, कि यदि हम अपने गुरु को छोड़ देते हैं या हम कहीं और चले जाते हैं, किसी और मार्ग को अपनाना शुरू कर देते हैं और शायद हम ठहर कहीं भी नहीं पाएंगे, तो इस बात को थोड़ा जरूर स्पष्ट करें ताकि मन का जो एक डर है, भ्रम है, वो दूर हो जाए।
देखिए गुरु को निंदक तो बनने की जरूरत ही नहीं, गुरु की निंदा क्यों करें, आखिर जिसने हमें कुछ सिखाया थोड़ा भी,
यदि हम उनके पास से कहीं और कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो भी वो मानते हैं कि शायद गुरु जी हमारी परफेक्ट,
यही बात है, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि इसमें गुरु की निंदा करने की बात नहीं है, गुरु अच्छे ही रहे हैं, उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, कुछ ना कुछ तो समाज को सिखाया ही है, भले ही आज कुछ गुरु बदनाम हो गए हैं, वो उनके जिम्मेदार वो स्वयं हैं, लेकिन इससे क्या है, जो अच्छे गुरु होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं, लोग सोचते हैं ये सारे गुरु तो ऐसे,
लोग धर्म से विमुख
हो जाते हैं, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है वो जैसे ये समाचार सुनते हैं टीवी पर तो वो सोचते हैं गुरु गुरु सब बेकार की चीज है, इनको छोड़ो, इनसे कुछ नहीं मिलेगा, तुम एजुकेशन प्राप्त करो, तुम आगे बढ़ो, तो एक गुरु का ऐसा पतन अनेक अच्छे गुरुओं से भी लोगों को दूर कर देता है। तो हम गुरुओं की ग्लानी करने की बात नहीं कर रहे, हम गुरुओं की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने, मैं तो उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ जो ज्ञानी हैं और जो बहुत पवित्र हैं, जो परमात्मा के ध्यान में सारा दिन नहीं तो कुछ समय तो मगन रहते हैं, दे आर ग्रेट गुरु, और वो हमारे देश की शोभा भी है, वो हमारे देश में होने ही चाहिए सदा। लेकिन बात यही है कि देखिए एजुकेशन होती है, हम एक स्कूल में हाई स्कूल पास करते हैं, फिर बारहवीं के लिए मान लो कोई दूसरे स्कूल कॉलेज में चला जाए, फिर आगे की डिग्रियों के लिए फिर किसी और जगह चला जाए, यूनिवर्सिटी बदल ले,
और ये होता है,
तो ये तो होगा ही ना। अब कोई ये सोचे हाई स्कूल वाले टीचर के यही तो क्या कर दिया हमें छोड़ के वहां क्यों गए, तो देखिए स्टेप्स हैं।
बिल्कुल,
जो परम सद्गुरु तक पहुंचने की बात है वो तो वो स्वयं ही आकर पहुंचाता है, परंतु अगर कोई गुरु बहुत अच्छा ही अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं तो नो डाउट दे आर आल्सो पूजनीय वंदनीय, वो भी बहुत अच्छे हैं, उसमें न उनको ये मानना चाहिए कि हमें छोड़ के कोई क्यों जा रहा है, जिससे जिसको जहाँ अच्छा मिलेगा वो तो वहाँ जाएगा ही। देखो मंदिरों में भी होता है, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वहाँ से भाई प्राप्ति नहीं हो रही तो फलानी जगह का जो हनुमान है, पंचमुखी जो हनुमान है, वो सबकी इच्छा पूरी कर रहा है, लोग वहाँ भागने लगते हैं। अब पहले हनुमान जी नाराज हो जाए, मुझे छोड़ के वहाँ क्यों जा रहे, भाई गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारा स्टॉक खत्म हो गया है, तुम उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे हो, तो अगर कोई गुरुओं को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जा रहा है तो गुरु को नाराज न होकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए कि हम भी ऐसे योग्य बने कि हमारे शिष्य और कहीं न जाएं। और देखिए जहाँ भगवान के मिलन का मार्ग दिखाया जा रहा हो वहाँ छोड़ने की बात ही नहीं, हम स्टेप्स चेंज कर रहे हैं, हम क्लासेस चेंज कर रहे हैं, हम अपने ग्रेड्स बदल रहे हैं, और भगवान खुद पढ़ाने आ गया हो फिर तो और किसी की जरूरत ही नहीं।
तो गुरु भी थोड़े ओपन माइंडेड हो और अपने शिष्यों के लिए ऐसी बंदिशें न रखें। वैसे भी हमारे यहाँ कहा भी गया, हमारी संस्कृति ही है, भारत की संस्कृति, जो जहां से भी आया यहां के होके रह गया और हमने भी सबको दिल से स्वीकार किया है। तो जहां से भी अच्छी चीजें मिल रही हैं, जो जैसे आपने कहा कि यदि मेरा स्तर बढ़ता चला जा रहा है या मुझे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से मुझे बहुत सारी चीजों को जानना सीखना समझना होगा।
इसमें मैं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की रियली प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिख के लास्ट पेज पर ये लिख दिया कि जो मैंने तुम्हें कुछ सुनाया है, सिखाया है, तुम ये न मान लेना यही अंतिम सत्य है। हो सकता है मेरे से भी कोई बड़ा विद्वान आगे चलकर आए और वो तुम्हें कोई और अच्छी बात सिखाए, तो तुम उसकी बात सुनना, स्वीकार करना। तो ये है एक मनुष्य की महानता। किसी भी गुरु को भी यही मानता अपनानी चाहिए कि भाई तुम वहाँ जा सकते हो जहाँ से तुम्हें सत्य ज्ञान मिले। और ऐसे गुरु हमारे पास हैं, हमारे पास लोग आते हैं और बताते हैं हमें हमारे गुरु ने ही भेजा है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, वहाँ तुम्हें शिव का ज्ञान मिलेगा। देखो मैं तो तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी ये मदद की, लेकिन अगर तुमको ये चाहिए तो वहाँ जाओ। तो रियली वो प्रशंसा के पात्र हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो होना ही चाहिए भ्राता जी। जैसे डॉक्टर्स भी रेफर करते हैं कि भाई ये चीज यहाँ ठीक हो सकती है, ये चीज यहाँ ठीक हो सकती है, तो वो भी अपने पेशेंट्स को यदि उनके लिए एक अच्छा भाव रखते हैं तो उन्हें भेजते ही हैं। निश्चित रूप से हमें भी एक खुला ऐसापन अपनाना चाहिए।
बिल्कुल
राता जी, एक चीज और विशेष रूप से मैं जानना चाहूंगा, जब गुरुओं की बात चल रही है और हम संबंधों की बात कर रहे हैं, तो गुरु वास्तव में क्यों किया जाता है और गुरु विशेष हमें क्या प्रदान करते हैं? क्योंकि आज की संस्कृति में जैसे हम युवा पीढ़ी की ही बात कर रहे थे, तो आजकल ऐसी कोई परंपरा युवा नहीं, अपनाना नहीं, नहीं चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते। गुरुओं की जो महत्ता है वो क्या है आज?
अभी तो देखिए आधुनिकता हो गई है, एजुकेशन बढ़ गई है, और जो नई पीढ़ी है, जो पुरानी भी है, जो युवक हैं आजकल के, अब वो भी इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। भौतिकता का बोलबाला हो गया है, कलयुग अपनी अंतिम परछाइयां फेंक रहा है, तो उसका संपूर्ण प्रभाव भी मनुष्य पे दिखाई देता है। तो आजकल तो ये परंपरा रही नहीं, लेकिन ये परंपरा थी बहुत सुंदर कि बच्चे बचपन से ही सद्विवेक प्राप्त करें। ये कॉलेज स्कूल्स तो पहले होते नहीं थे, गुरुकुल होते थे, और उसमें भी ब्राह्मणों के बच्चे ही ज्यादा पढ़ते थे, थोड़े बहुत क्षत्रियों के बच्चे जाते थे, और भी किसी को कहीं जगह मिल जाती थी जिनकी पहुंच होती थी, बाकी न इतने गुरुकुल थे और न गुरु लोग इतना प्रबंध कर पाते थे। तो ये असली विद्या जो है वो भी थोड़े लोगों को ही प्राप्त होती थी। तो एक सुंदर बात थी, कुछ लोग वहां से एजुकेट होकर फिर समाज में आकर दूसरों को विद्या देते थे, या जो उनके क्रियाक्रम के और सब अनुष्ठान शादी करते हैं, शादियों पे, मृत्यु पे, उसको वो कराते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज थी, इससे समाज में विद्या का प्रचार प्रसार रहा। तो उसकी बहुत आवश्यकता थी, समय अनुसार आवश्यकता आज भी है, लेकिन आजकल स्कूल कॉलेज इतने खुल गए हैं कि जो ये लौकिक एजुकेशन है इसको ही प्राप्त लोग करके कुछ कमाना चाहते हैं, वो डिग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी उन्हें नौकरी मिल जाए, वो सोचते हैं गुरु से क्या मिलेगा भाई, गुरु तो हमें मंत्र दे देगा, ज्ञान तो वहां ज्यादा दिया नहीं जाता, और नहीं तो भागवत की कथा जो लोगों ने कई बार सुन ली है, रामायण की कथा, दो ही कथाएं ज्यादा चलती हैं, कहीं शिव पुराण की चलती है, तो इससे लोगों को कुछ ज्यादा आनंद नहीं आता है। इसलिए गुरु का होना भी अच्छा था, और ये जो परंपरा थी कि बच्चों को गुरु करा दिया जाए, और इसका एक इम्पोर्टेंट जो एक मान्यता चली आ रही थी, गुरु नहीं होगा तो तुम्हारी सदगति नहीं होगी, जब तुम ऊपर जाओगे तो गुरु ही तो तुम्हें वहां मिलेगा, अब बेचारे गुरु भी नीचे रह गए, ऊपर कोई जाता ही नहीं है, इसलिए वो मान्यता भी खत्म हो गई, सब अपने धंधों में लग गए हैं, इसलिए परम सदगुरु को आना पड़ा कि मैं आ गया हूँ, लो अब ये गुरु काम नहीं कर रहे तो मैं आ गया हूँ तुम्हारी सदगति करने के लिए।
चलिए, ये बहुत सुंदर बात राता जी आपने कही है। वास्तव में सदगुरु से ही हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, उनसे ही हमें गति सदगति मिलती है। ये बात ठीक है कि कलयुग के अंत में हम कई स्थानों पे भटक गए, लेकिन अब परम सदगुरु का आना हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें ठिकाना जरूर मिलेगा। तो जो सर्व संबंधों की हम चर्चा कर रहे थे राता जी, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे आपके साथ, क्योंकि जब राज योग हम कहते हैं तो एक संबंध की बात आती है, और संबंध यदि सुप्रीम से जुड़ जाए तो निश्चित रूप से जीवन बहुत आनंदित होगा। चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों कितना अच्छा होगा जो सदियों से हम गाते आए हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे संसार हो। यदि ईश्वर से वो सारे नाते हमारे जुड़ जाते हैं तो सचमुच जीवन कितना आनंदित हो जाएगा, सुख शांति से परिपूर्ण हो जाएगा और जीवन में समस्या नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। वास्तव में अंधकार वहां होता है जहां प्रकाश नहीं होता। जब प्रकाश आ जाए तो किसी प्रकार की समस्या का अंधकार हमारे जीवन में रह ही नहीं जाएगा। ये राजयोग जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं निश्चित रूप से हमारे जीवन को ऐसे ही प्रकाशित करेगा। आप बने रहिएगा समाधान में हमारे साथ। इस चर्चा को भ्राता जी के साथ हम आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार।